अय्यूब अध्याय दस। अध्याय दस में अय्यूब कहता है, पद एक, मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है। वो अपने दुखों में फिर से खो जाता है। वो समाधान की खोज करता है परंतु असफल रहता है, अतः वो जीवन से निराश हो जाता है। अध्याय दस पद एक से लेकर नौ तक, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी ना ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तेरी देहदारियों की सी आंखें हैं और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है या तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य है कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है? मुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूं और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नाश किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी की नाई बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? अब अय्यूब परमेश्वर के सामने अपनी याचना रखता है। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता। क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? तेरे काम क्या है? क्या तू जानता है कि तूने मुझे गूंदी हुई मिट्टी की नाई बनाया है? मुझे बड़ी संतावना मिलती है जब मैं भजन संहिता पढ़ता हूं। भजन संहिता 103 का 14 पद, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। ना तो तुम शक्तिमान हो, ना तुम अद्भुत स्त्री हो, ना तुम कोई महान संत हो जैसे सोचते हो। तुम केवल मिट्टी हो। परमेश्वर ये जानता और याद रखता है। पिता, तेरा धन्यवाद हो कि तुझे ये स्मरण रहता है। मैं तो भूल जाता हूं। मैं सोचने लगता हूं कि मैं जो हूं उससे कहीं अधिक हूं और जो मैंने पाया है वो वास्तविकता से कहीं अधिक पाया है। इस प्रकार जब मुझ में घमंड आ जाता है और उसका प्रेम ऐसा है कि वो मेरा सारा घमंड निकाल देता है और मैं विमूढ़ होकर कहता हूं, हे प्रभु, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो अपने आप से ही घबरा गया हूं। मैं फिर विफल हो गया। वो कहता है, कोई बात नहीं, तू है तो मिट्टी ही, भूलता क्यों है? वो आपकी रचना को जानता है कि आप स्टील के नहीं बने हैं। वो जानता है कि आप मिट्टी हैं। अय्यूब परमेश्वर से यही कहता है, याद रख कि तूने मुझे मिट्टी से बनाया है और तू मुझे फिर से मिट्टी में मिला देगा। अध्याय दस पद दस, क्या तूने मुझे दूध की नाई उंडेल कर और दही के समान जमाकर नहीं बनाया? ये भी कविता है जिसमें सजीव वर्णन किया गया है। परमेश्वर ने मुझे दूध की नाई उंडेल कर दही का सा जमा दिया है। अध्याय 10 पद 11, फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया। क्या आप अपनी हड्डियों के ढांचे को अपना बाड़ा मान सकते हैं? अध्याय 10 पद 11 से लेकर 15 तक, और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है, तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं तो जान गया कि तूने ऐसा ही करने को ठाना था। जो मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष ना ठहराएगा। जो मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय, और जो मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर ना उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। हे प्रभु, मैं तो चकरा गया हूं, मैं नहीं जानता कि जीवन क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है मैं नहीं जानता। हे प्रभु, मेरे कष्टों को देख, प्रभु मैं तो असमंजिश में हूं। मैं कई बार आयुब की स्थिति में होता हूं कि जीवन के भेद समझ में नहीं आते हैं कि हो क्या रहा है। हे प्रभु, मेरे कष्टों की ओर निहार। अध्याय 10 पद 16 से लेकर 18 तक। और चाहे सिर उठाऊं तो भी तू सिम की नाई मेरा आहायर करता है, और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्य कर्म करता है। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है, और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है, और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? तूने मुझे पैदा होने के बाद जीवित क्यों रखा प्रभु? अध्याय 10 पद 18 से लेकर 22 तक। नहीं तो मैं वही प्राण छोड़ता, और कोई मुझे देखने भी ना पाता। मेरा होना ना होने के समान होता, और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले, कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है, और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। हे परमेश्वर, मुझे मरने से पहले थोड़ी सी छूट दे दे, क्योंकि मैं परेशान हूं। अब अध्याय 38 में पहुंचने तक हम अंधकार में हैं। कृपया हमारे साथ धीरज रखें। जीवन का मूल क्या है? जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है? आयुब की पुस्तक में लिखा है कि वो सदैव आकर्षक नहीं होता, वो सिद्ध होने से बहुत दूर होता है। हमारी एक मूल आवश्यकता है जिसे परमेश्वर ने यीशु के द्वारा पूरा किया है। आयुब की प्रत्येक पुकार का उत्तर नए नियम में यीशु के पास है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की मूल आवश्यकता का प्रावधान मसीह के द्वारा कर दिया है। मैं बहुत आभारी हूं।